पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
जो सतनाम का जो जाप है आपका, आपको सात नाम तो पहले दिए जाते हैं, पांच नाम तो ये इन यहां के भगवानों से हमने अपना ऋण मुक्त होना है, इनकी कमाई करके इनका कर्जे से मुक्त होना है, या कमाई इनको दे देंगे हम, ये हमें छोड़ देंगे। और जो दो मंत्र हैं इसमें फर्स्ट एंड लास्ट सात मंत्रों में, ये परमात्मा की भक्ति पैरेलल करवाई जा रही है आपकी। ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि ये साधना कर प्रथम मंत्र मिला है और किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उस प्राणी का मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाता है, उसको तुरंत एक साल के अंदर अंदर मनुष्य जीवन पाओगा, वो ये गारंटीड बात है। अगर इस नाम को लेकर भी और नाम लेने के घंटे बाद भी डेथ हो जाती है तो भी मनुष्य जीवन मिलेगा, इतना जबरदस्त मंत्र है भगवान का प्रथम मंत्र। फिर जो दो मंत्र का जाप है सतनाम जो है, इसमें एक ओम मंत्र है। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं जी ये मंत्र तो उन पांच नामों में भी है, और फिर दूसरे का पता चलता तो भी कहते हैं ये उनमें भी है। पुण्यात्मा एक जड़ी होती है, उस जड़ी को पांच सात जड़ियों में मिला दिया जाए तो उसका गुण अलग होता है, और उनका दो अलग से और उसकी विधि खाने की अलग हो बनाने की, तो उसका गुण अलग होता है, वो अलग अफेक्ट करती है। तो ये मंत्र है, इनको ऐसे यूज करेंगे तो ये लाभ देंगे, और ऐसे उनका प्रयोग करेंगे तो वो ये लाभ देगा। इतना समझना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ज्ञान हमारे को था नहीं, अब ये ज्ञान मिला है तो अब हम वकील बन जाते हैं। अब यहां वकालत नहीं चलेगी आपकी, आपका समर्पण चलेगा। अब काल ने यह काम करना था कि पहले इन भ्रमित गुरुओं के पास भेज दिए तुम, और वहां आप श्रद्धा से बैठे रहे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसने जो ज्ञान दे दिया वो सिरोधार्य किया। अब जब ये ज्ञान सच्चा आया और सबसे भिन्न है तो वकील बन जाता है ये मन, ऐसा कैसे हो गया। और वहां ना बोला एक दिन भी, तू 20-30 साल खो दिए उन गुगुआ दो रहे, वाना तेरे मन में कभी आई, क्योंकि उसको पता है कि यहां चला गया, तो मन काल को पता है कि यहां चला गया, तेरे हाथ तक गया, छूट गया और पार होगा। तो यहां वकालत करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। नाम लेने से पहले खूब समझो इस ज्ञान को, 100-100 बार पढ़ो किताब को और ज्ञान सुनो, और फिर उपदेश लो। उपदेश लेने के बाद फिर आप इस दास के प्रति या इस ज्ञान के प्रति बकवास मन में आती है तो नाम खंड हो जाएगा आपका, फिर समर्पित कीजिए। अगर आपको एक ज्ञान समझ में आ जाता है तो कहते हैं फिर परमात्मा को, जब ये ज्ञान समझ में आ गया उपदेश लेने के बाद, तो गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। गुरु जी को भगवान मानकर अपने यहां से छूटने का प्रैक्टिकल करना चाहिए। जैसे एक गणित का प्रश्न आता है ब्याज का, और उसमें ये कहा जाता है कि मूलधन ज्ञात करो, वो मूलधन तो करोड़ों रुपए का होता है, और उसमें सबसे पहला फार्मूला ये है, ये मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये है, वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन वो 100 रुपयों को मूलधन माने बिना वो इक्वेशन सुलझे नहीं, वो प्रॉब्लम हल हो नहीं सकता, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता, तो उसमें 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। उस 100 रुपये मूलधन से वो हमारा ओरिजिनल मूलधन मिल जाएगा आपको, यानी आपको आप जी ने गुरु जी को ये मान करके आज हमारे सामने भगवान बैठे हैं। गुरु जी भगवान नहीं है, इस दास को अपनी स्थिति का पता है, लेकिन आप जी ने ये रिहर्सल करनी पड़ेगी ना यह बात आपकी कद्दे भी ना सुल जाए। तो इस दास के स्थान पर भगवान होता तो आप कैसे ट्रीट करते? जिनको कुछ परमात्मा का पूर्व आभास है, पिछले जन्म के पुण्य है, वो तो आज भी उसी तरह हैं, लेकिन कुछ दिनों में जो नए नए आए हैं वैसे अपना मनमुखी साधनाएं कर रहे थे, तो उनको धीरे धीरे ये ऐसा अभ्यास हो जाएगा। तो ये सोच लो जैसे परमात्मा आए थे 120 वर्ष बनारस में रह कर चले गए, और उसी को पाने की हम ट्राई करें, वो हमारे सामने बैठा। यदि हम उस दिन जब वो मालिक आए थे हम उनको भगवान मानकर स्वीकार कर लेते तो हमारे अंदर खरपतवार पैदा नहीं होते, बकवाद नहीं आती, और ना हम किसी की सुनते जो परमात्मा से दूर कर दिए उस समय हमारे कोई नकली अज्ञानी गुरुओं ने और बता दिया कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेद और शास्त्रों को, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, सब झूठ बोलता है। तो हमने यह मान ली इस बात को कि गुरु जी जो है कबीर साहब अशिक्षित हैं और ये वेदों और गीता जी आदि को नहीं समझ सके, समझ ही नहीं सकते क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानते, और जो ब्राह्मण लोग थे, गुरु थे, मंडलेश्वर थे, संत ऋषि थे, हम ये सोचा करते ये संस्कृत भाषा जानते, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा। और कबीर जी के बारे में जब वो ईर्ष्यावश वो अन्य गुरु कहा करते थे तो हमने वो स्वीकार कर लिया, हमने अपने भगवान पर विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है, ये झूठ नहीं बोल सकते, जिस कारण से हम फिर यहीं रह गए। तो परमेश्वर उसमें अपनी सारी सब भेद उसमें लिखकर चले गए कि मैं ऐसे बताता हूं, ये मान नहीं रहे। और आज वही बातें प्रमाणित होगी सदग्रंथों में कि जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कहा करते थे वो सच्ची थी, और जो नकली गुरु थे ये संस्कृत के महर्षि थे, केवल ये भाषा के महर्षि थे, अध्यात्मिक ज्ञान के महर्षि नहीं थे, ये व्याकरण के ऊपर पुष्टि करेंगे। व्याकरण का क्या लिंक है भगवान की भक्ति में? भगवान का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में, अपनी साधारण भाषा में कोई भी कुछ बोल दे उस ज्ञान समझ में आना चाहिए, इतनी सी बात थी। ये पहाड़ बना रखा था और अब आपके समक्ष ये तत्व ज्ञान इतनी सिंपल लैंग्वेज में आ गया कि आम बच्चा भी समझ सकता है इसको और बूढ़ा बुजुर्ग भी समझ सकता है। ज्ञान ही तो है ये, इसको संस्कृत में बोलकर समझा दो चाहे हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी समझा सकते हो, वो ज्ञान समझ में आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले गुरु को भगवान मानकर फिर अपना रिहर्सल करनी होगी। तो गुरु जी के बारे में हमने कैसे रहना चाहिए, गुरु के सामने कपट से बात नहीं करें, गलती हो जाए तुरंत बता दे ताकि उसको ऊपर काल अटैक ना कर सके, तो उसको दोबारा तुरंत नाम दिया जाएगा, उसका नाम सुचारू होगा, भगवान से जुड़ जाएगा, नहीं तो कभी भी काल अटैक कर सकता है। जो शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, आन उपासना कर लेते हैं, मांस खा लेते हैं या कोई अन्य जो मर्यादा है तोड़ देते हैं और वो फिर बताते नहीं दोबारा, उसको शुद्ध नाम को कराते नहीं, उन पर कभी भी काल अटैक कर सकता है। तो इसलिए अपना गलती को हो भी जाती है क्योंकि किस भयंकर लोक है, तो तुरंत मालिक से सुचारू करवाओ, दोबारा जुड़ाओ कनेक्शन को। कनेक्शन कटने के बाद पावर आएगी नहीं आपके घर पे, बिजली नहीं आएगी, कोई भी काम नहीं होगा। तो गुरु जी के पास आकर ऐसे भाव से रहे, तो वहां हम जब जाएंगे त्रिकुटी के ऊपर वहां परमेश्वर हमें मिलेंगे इस दास के रूप में, और जैसी भी इस दास के प्रति आपकी यहां भावना होगी वो स्वप्न होता है, तो यहां शरीर छूट जाएगा। आप स्वप्न में कई बार ऐसे जाते हो, ऐसे वहां जाओगे और आपको लगेगा जैसे हम सचमुच यहां आ गए, तो वहां आपसे कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर अपने आप आपका पारदर्शक शरीर है वहां पर, और अंतःकरण में जो भी होगी आपकी बाहर दिखाई दे, जैसे आंखों के अंदर से आप देख रहे हो अपनी भक्ति के लक्षण, तो वहां आप इनको पढ़ सकोगे कि ये किसके हैं और कैसे थे। तो वहां भगवान आपको फिर जिनके सारे नंबर पूरे होंगे, भक्ति सही होगी, उनको साथ लेकर धनराज के दरबार में जाता है और वहां कहते हैं कि ले भाई अपने ओम नाम की कमाई तुम रख लो, इसकी भक्ति जो सतनाम के अंदर दो मंत्र हैं, एक ओम एक तत्, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में सचिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति, उसकी प्राप्ति के लिए पूर्ण मोक्ष के लिए इन तीन मंत्रों का विधान बताया है कि नथिंग एल्स, बस यही मंत्र है। और फिर ये भी ऑप्शन छोड़ रखा है कि तत्वदर्शी संत बतावेगा पूर्ण और ज्ञान जो इससे भी भिन्न होगा हटके, और वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से ही बताएगा। तो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में प्रथम मंत्र अलग से है जिसमें ये सात मंत्र हैं, और दो मंत्र ये सतनाम है, और तीसरा एक आदि नाम है जिसको सार नाम कहते हैं, वो सत नाम से जाना जा, वो कोड वर्ड है उसका सत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत् सत, ओम और तत् ये दो अक्षर का है, ये तो एक सतनाम बन जाता है। तो इस सतनाम में दो अक्षर हैं, पहला जो अक्षर ओम है इसका श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है, तो और दूसरा कोड वर्ड है तत्, वो दास बताएगा या जिसने सतनाम प्राप्त है वो भक्त खूब जानता है। तो इस ओम नाम की कमाई जो यानी ब्रह्म सत्र की जितनी पूजाएं हैं या धार्मिक यज्ञ आपसे कराए जाते हैं, ये एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान की, तो ये यज्ञ और ओम नाम का जाप ये काल का ही ऋण उतारने के लिए है। तो वहां हम इसको दे देंगे, छोड़ देंगे, फिर ये हमें यहां से बरी करेगा, इसकी व्यवस्था होगी, क्योंकि सामने परमात्मा एक वकील के रूप में खड़े होंगे और कहेंगे इसका हिसाब करो, ये आपका अकाउंट क्लियर हो चुका है। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में पढ़ा, पढ़ते हो बहुत बार और अरदास भी बहुत बार आपको दिखा चुका है, तो उसमें ये कहा कि मेरे सत्र की अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है, वो परमेश्वर है, और उसी की कृपा से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और वहां जा सकते हैं जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये प्रमाण है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को इसकी जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा है, उस जड़ से ही समझो पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, और तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं ये। और जो संत इसके विषय में सब विभाग बता देता है, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, पत्ते क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की साधना करने वाले को सनातन परम धाम शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। शाश्वत स्थान वो है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तो 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा, उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी सब अंधकार को काट के यानी तत्व ज्ञान से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। आज दिन के सत्संग में भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था, क्योंकि ये आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, दास या आध्यात्मिक टीचर है, तो आपको रह रह कर ये ज्ञान कंठस्थ कराया जाएगा। बहुत बार सारा वर्ष आपकी रिपीटेशन कराई जाएगी, जब जाकर आपके हृदय में ये ज्ञान समा होगा। और दूसरा ये समझो कि जब तक हम रोगी हैं, हमने पूरा औषधि खानी पड़ेगी, समय पर वो टेबलेट वही होती है, और दोनों टाइम फांकी मारनी पड़ेगी, तभी स्वस्थ होंगे। तो फिर क्या बताया कि वहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तुम देहं सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक इसका जो सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाते समय इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है, वो ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावर्ती में वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, वो शाश्वत स्थान नहीं है कि जहां जाने के बाद फिर लौट करके भी नहीं आते। यानी ओम की साधना से भी, ब्रह्म सर्वपुरुष की साधना से भी शाश्वत स्थान नहीं मिला और वो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म की साधना भी व्यर्थ है। व्यर्थ है मैंने इनकम्प्लीट है, वो परम शांति और सनातन परम धाम नहीं मिल सकता जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपुनात्मा अब गीता जी अध्याय नंबर 18 यो लास्ट अध्याय अंतिम, और 62 से लेके आगे तक ये लास्ट श्लोक है, मंत्र है, और 66 तक निर्णायक ज्ञान दिया। आगे फिर और अन्य बातें कुछ और टाइप की बोली है, यहां तक एक भक्ति से लिंक है इसका। और यहां ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62 में, तो यह कह दिया कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन ये गुप्त से गुप्त ज्ञान जो गीता वाला ज्ञान मैंने तेरे ताई कह दिया। अब 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में कि उस तत्परम को जान लेता है जो अध्यात्म ज्ञान से पूरा परिचित हो जाता है, सब कर्मों को जानता है, तो वो व्यक्ति केवल जरा और मन से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो किसी और वस्तु की डिमांड नहीं करता। जरा मिन वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा और मरण मृत्यु, ये दोनों कह रहे हैं इस जीव के ऊपर। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम क्या है कि जिसके जानने के बाद इंसान यहां की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल यहां से पीछा छुटवाने की ही चेष्टा करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता इस सर्वपुरुष ने उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, तीन ब्रह्म कहो, तीन पुरुष कहो, तीन प्रभु कहो, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इनकी सचिथी बताई है कि ये भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, और जीवात्मा तो किसी की नहीं मरती, कुत्ते की बिना मरती वो तो अलग बात है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरमावी से भी बरती अब ईश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष 16वें श्लोक वालों से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो है वो परमात्मा जिसकी शरण में जाने से प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता, उसको सनातन परम धाम शाश्वत स्थान प्राप्त होता है, वो सचखंड प्राप्त होता है, सतलोक प्राप्त होता है। अपनी साधना बता रहा है आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में, मेरा वो नाम है नथिंग एल्स, गीता ज्ञानदाता कहता। और गीता जी दैन विराट के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहता, मेरे में मनवाला हो, मेरा भगत बन और मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझे मेरा सिमरण भी कर, मुझे प्राप्त होगा। ओम नाम से कहां जाएगा, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक के जाने के बाद फिर पुनर्वृत्ति आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में, फिर तुरंत आठवें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में फिर कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना जो करता है और वो साधक उसी को प्राप्त होता है। अपुनात्मा 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में आपको बता दिया कि वो कहता है कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा, गीता ज्ञानदाता कहता है उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा और उसकी कृपा से तू वो स्थान प्राप्त कर सकता है जहां जाकर फिर लौट कर वापस नहीं आते। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे तो बता दिया मैंने, अब जैसे तेरा मन माने न्यू कर ले, मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, अच्छा ठाणा पड़ेगा, यहां शांति नाम की चीज नहीं। और जो भोली आत्मा ओम शांति कहते हैं उन्हें कहे कह उन्हें विराम तो सर्प की पूछ पकड़ रहे हैं। ओम के ओम कर शांति का काम के ओम तन ओ तनु कहे मेरी भक्ति करेगा तो लठ बजाना पड़ेगा, युद्ध कर और तेने शांति चाहिए तो वहां जाओ परम अक्षर परम की शरण में। अब 18वें अध्याय के यहाँ बिल्कुल निर्णायक श्लोक आ गए, ये 62 से लेकर 66 तक। अब 63 में कह दिया कि मैंने जो तेरे की बताना था दिया बता, अब तू फैसला कर ले, तने मेरी शरणवाना है तो युद्ध कर और ये ओम नाम का जाप कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, और तूने उसकी शरण में जाना है तो तू दर्शी संतों की खोज कर, मैं उसके बारे में कंप्लीट ज्ञान नहीं जानता। 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में, और वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे उस परमेश्वर के बारे में, उन वो बताएंगे कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप ऑफ उस कंप्लीट गॉड, उस पूर्ण परमात्मा की परम साधना सत साधना वही बताएंगे पूरी साधना। अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि एक और गुप्त बात बताऊं, अब कि वो मेरा भी पूज्य इष्ट देव है। खुद परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी गोरखनाथ जी के साथ जब उनकी गोष्ठी हुई, गोरखनाथ जी ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार किया। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन विविधता ध्यान हमारा है, ये भी हमारी हमारी साधना करता तब इसको कुछ टुकड़ा देता हूं, अपने 21 ब्रह्मांड को चला रहा है और अब ये स्वयं स्वीकार कर रहा है कि वो मेरा पूज्य देव है। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में ये शब्द बोल दिए कि एक और देखो, अगर यहां दोबारा गुप्त शब्द नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि गुप्त भेद तो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह चुका है कि गुप्त से गुप्त भेद तुझे बता दिया, इतना ज्ञान बता दिया कि उसकी शरण में जाना है तो ये बेनिफिट है, मेरी शरण में रहना तो ये इतना लाभ होगा, अब तेरी समझ में ऐसे कर ले। फिर 64वें श्लोक में फिर गुप्त कहा कि एक अति से और भी गुप्त से गुप्त बताता हूं, वो मेरा इष्ट देव है, इष्ट असी में दृढ़म तत् वक्षामि ते हितम, वो तेरे हित में बताऊंगा कि वो मेरा ये गुप्त से गुप्त वेदनाथ तक किसी को नहीं बता। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फिर इसने कहा कि मुझ में मनवाला हो, मेरा भगत बने और मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। अब यहां क्लियर कर रहा है, अगर मेरी भक्ति करने मेरे मनवाला हो, जैसे 8वें अध्याय के 6 श्लोक में कहा है कि जो भी अंत समय में जिस भी भाव में भावित रहता है, जिस इष्ट में जिसकी श्रद्धा बनेगी, अंत समय में उसी को प्राप्त होता है, उसी भाव में रहता हो। और यहां परमात्मा भी कहते हैं कि जहां आशा ता बासा होई, कबीर जी कहते हैं, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 65 में देखो एक और विशेष बात है ध्यान करने की, 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में जब कहा इसने कि उन तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, अब तत्वदर्शी संत कौन थे? खुद भगवान थे, कबीर परमेश्वर। 600 वर्ष पहले आए, वो भूमिका कर गए। अब उस परमेश्वर ने इस दास को वो ज्ञान दे दिया। तो आज के इस युग में ये दास तत्वदर्शी संत है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि इसे ज्ञान के बताने वालों को दंडवत प्रणाम कर, अपने बारे में कहता मुझे नमस्कार कर। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता है कि मेरे ममन वाला हो, मेरा भगत बन और मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर बताया है कि तूने यदि उसकी शरण में जाना है, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, तो उसका एक फार्मूला ये है कि मेरे सत्र की जितनी भी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे। यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए, ओम तत् सत। तो ओम तो ये सर्वपुरुष का, जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में और 17वें श्लोक में 3 पुरुष हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। तो अन्य ओम तो सर्वपुरुष यानी ब्रह्म का, और अक्षर पुरुष का तत् वो गुप्त है, सांकेतिक है, ओम सीधा ही है, और सत जो है ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का। तो इन 3 मंत्रों से परमात्मा प्राप्ति होगी, और अन्य जो मंत्र हैं वो यहां तक रणमुक्त होने के, त्रिकुटी तक जाने के हैं, ये सभी मिलकर सहयोगी हैं इसमें। तो मूल मंत्र है यहां पर कि ओम नाम का जाप हम काल को दे देंगे, ब्रह्म को। अब त्रिकुटी पर जब हम पहुंच जाएंगे तब इसका हिसाब करवाएगा परमेश्वर आकर के, ना ये कदे भी ना हिसाब करे हमारा। आप यहां देखते हुए कलर का ना सूत माता साहब ना बताई जाते, और ये तो याद काल का तब कसूता जकड़ा इस जीव के ऊपर। तो स्वयं परमेश्वर आते हैं और इनको लेकर धर्मराज के दरबार में, जहां अकाउंट होता है सबका, वहां जाते हैं और वहां उनको उनका इतिहास दिखाते हैं। परमात्मा वकील बनते हैं आपका कि देखो आपका विधान है, गीता अध्याय नंबर 18 के 66 में लिखा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापे व्या मोक्षामी मासुच। ये तुम्हारा ही विधान है, तुमने, तुम्हारे भगवान ने बोल रखा है, और ये विधान है, इसके आधार से हमारा हिसाब करो, और लो अपने ओम नाम का जाप पर ये सारी पकड़ो, यज्ञ याग जितने हमने कर रखे हैं तुम्हारी सत्र, और हमारे सब ये जितने भी इसका जो पाप है वो कैंसिल करो। वकील सामने जब दिखा देता है जज को कि ये विधान ये बोल रहा है, तो जज उसको तुरंत करता है, वो फिर नहीं सुनता किसी की, क्योंकि विधान में जो लड़का फाइनल हो, तो उसी समय न्यायाधीश ऐसे ही करना शुरू कर देता है, जो यहाँ का ब्रह्मांड का न्यायाधीश काल ने बैठा रखे हैं, धर्मराज से कहते हैं। तो क्या कहता है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। अब इन्होंने अनुवाद गलत कर रखे हैं यहाँ पर अनाड़ियों ने, इन अज्ञानियों ने, गीता अनुवादकर्ताओं ने, जो महर्षि को आया करते मंडलेश्वर को आवे थे, बड़ी बड़ी फी थे, 1008 क्या लिख लेते अपने आगे पास, कुछ लगा लो घर की फीत, घर की वही काका लिखनिया, कुछ लिखो अपना। अब पता चलेगा महर्षि कैसे होते हैं, इस ज्ञान के सामने पता लगा उनमें क्या ज्ञान था, अब दास को क्या पता है, भगवान ने क्या बता रखा कबीर जी ने, अब कौन थे वो तत्वदर्शी संत, कौन थे विद्वान, वो कबीर परमेश्वर थे जो 600 वर्ष पहले हमारे सदग्रंथों में के गुड रहस्य को सिंपल लैंग्वेज में लिखवा के चले गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये गीता ज्ञानदाता कहता है सर्व धर्मान प्रीतज माम, मेरे सत्र के जितने भी साधनाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, धर्मान पूजाएं हैं, उन सबको मुझ में छोड़ दे, मेरे को दे दे। एकम शरणम वर्ज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु सर्वशक्तिमान, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में तू जा। अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामी मा शुच, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब हम किसी का ऋण दे देंगे, जब तक ऋण नहीं देते थे पहले क्या था, जैसे कोई गरीब आदमी किसी से पैसे ले लेता और वो पैसे नहीं देता तो उसको अपने नौकर लगा लेता था खेतों में या दुकान पे या फैक्ट्री में, और कोई आकर का उसका हिसाब करवा दे, ठीक है भाई तू इसका पैसा पकड़ और इसको छोड़, तो फिर उसको छोड़ना पड़ता था। तो हम हमारे परमात्मा वहां जाएंगे और कहेंगे ले भाई तुम अपना पकड़ो और इसका सब ऋण मुक्त कर दो, इसको इसका जो भी उधार है सब खत्म करो। अब यहां आपको थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता को रूबरू कराते हैं और उसी समय आपके विश्वास होगा कि सचमुच ये दास जो वरवली बोल रहा है ये सच्ची सब सत्य है। एक शब्द भी दास बोलेगा वो शास्त्र अनुकूल होगा और आप कभी भी उसको मिला सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तो कभी आपको गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उस सच साहेब के अनुयायी हैं, उस सच्चे भगवान के अनुयायी हैं जो केवल सत्य ही पसंद करता है, वो बकवाद नहीं सुन सकता। तो हमारी हिम्मत नहीं हम कोई एक भी शब्द गलत बोल के किसी को गुमराह कर दें। हमने भगवान अपने से बहुत डर लगता है और आपको ये विश्वास दिलाना होगा प्रारंभ में कि ये दास जो कह रहा है सत्य है, और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा आएगा कि आप इस दास ने ये पुस्तक दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप जो दास शब्द निकालेगा आप कहोगे 100 के 100 सत्य है। तो ये बताने दिखाने जताने के लिए कि दास जो बोल रहा है और हमारे भगवान कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष के पहले जो कहा था वो सारा सत्य था और वो परमात्मा है, इसके लिए आपको पुस्तक दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय नंबर 4 का श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। इसका भाव यह है कि कुछ तो साधक योगी बने, साधक परमात्मा से जुड़ने की चेष्टा करने वाले को योगी बोलते हैं। ये केवल ऊपर न टांग नीचे न सर करना ही योगी नहीं होते, योग का अर्थ किसी से जुड़ना। तो साधक जन देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, और कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, इसका यह अर्थ समझो। और 26 में कहा है कि अन्य योगी जन यानी अन्य साधक आंख कान मूंद के केवल अपना संयम करते हैं, इस तरह की क्रियाएं करते हैं और उनको हवन माने ये उसमें ही आश्रित रहते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि यानी शब्द सप्र स्वरूप रसगंध इनसे ही बचने की चेष्टा में अपना अभ्यास करते रहते हैं, इंद्रियों समस्त इंद्रियों के अग्नि में हवन किया करते हैं यानी उसको ही फूकने की चेष्टा में लगे रहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि सभी साधक अपनी अपनी जो साधना कर रहे हैं उन्हें वो सही मान कर कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ये पाप नाशक हैं। जैसे इसका अर्थ है कि कोई शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। आगे 27 में फिर कहा है कि दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते। यानी भाव ये है कहने का कि कुछ साधक ये सोचते हैं कि जब तक हम विकार रहित नहीं होंगे तो हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, तो विकार रहित होने के लिए ही बहुत से प्रयत्न करते हैं, अपने कहते हुए जीवन को उसी में हवन में उस आग में झोंक देते हैं। जैसे एक श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने यही क्रियाएं की थी और उसने वन में काफी वर्षों तक वन में बैठकर एकांत में साधनाएं की और संयम करने के लिए कि जब तक हम अन्न खाते हैं तो हमारे अंदर विषय वासनाएं जागती हैं। उसने हठ योग करके अपने शरीर को ऐसा साध लिया, क्योंकि ये क्रिया होती है, जैसे कुछ पंथ अमृत क्रिया बताते हैं, जैसे जीव को मोड़कर ऊपर तालू का लगाने का अभ्यास करते हैं, ये इनको तो कुछ मिला को नहीं, इसका केवल अकेले से नहीं वो बात बनती और बहुत से योग क्रियाएं हैं जब जाकर वो बात बनती है, और कुछ प्राणायाम की क्रिया बहुत लंबे समय तक करने से वो क्रिया सफल शुद्ध होती है, सिद्ध होती है। तो श्रृंगी ऋषि ने वो साधना कर ली और उसका ऐसा हो गया कि वो अमृत टपकन लग गया उसके अंदर। और उसने कई वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में जाकर तो उस सेवा सिद्ध हुई। फिर उस वो क्या करता था, वृक्ष के पास बैठ जाता था, एक दिन में एक बार वृक्ष के छाल के जीभ से चाट लेता था, इतना अल्प आहारी हो गया वो, और अपना मेडिटेशन करता रहता था, आंखें बंद रखता था। तो उसने देख लिया कि अब तू सफल हो गया अपनी क्रियाओं में। अब फिर ये क्या करते हैं साधक जन, किसी नगर के आसपास आकर बैठते हैं कि लोग तुझे पहचाने, तेरे पास आवे और तेरी प्रभुता हो। वो बैठ गया अयोध्या के पास जाकर, उसमें राजा दशरथ राजा थे, रामचंद्र अहोर का जन्म हुआ नहीं था, केवल एक पुत्री थी राजा दशरथ के, और वो युवा हो चुकी थी 12-14 वर्ष की। तो श्रृंगी ऋषि वहां अयोध्या के बनी में जाकर बैठ गया, बनी में जो निकट नगर शहर के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बनी बोलते हैं, और वहां एक वृक्ष की तरफ मुंह करके बैठ गया, आसन पदम लगा के और आंखें नहीं खोले, एक बार ऐसे जीभ से वृक्ष की छाल को चाट ले, आंखें बंद किए किए ही। तो वहां शहर में इस बात का खूब जोर शोर से चर्चा हुई कि एक ऐसा महापुरुष आया है, कुछ नहीं खाता पीता, आज एक महीना हो गया उसको बैठे को, और उसको हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, वो वहीं बैठा है, ना कहीं फ्रेश होने जाता है, ना जलपान करता है, ना कहीं और सैर सपाटा करता है, वहां बैठा है। इस बात की चर्चा आग की तरह फैल गई पूरे अयोध्या में, लोग नगर के स्त्री पुरुष सब देखने जाने लगे, सारा सारा दिन वहां जमघटा लगा रहे आसपास, और वो ऐसा ही करे, एक बार जीभ लगाए बाकी आंखें बंद रखे। अब जब आदमी जीव लगावे है तो इतना तो ध्यान है कि तू कुछ चट्टे है, तो आसपास के उसकी प्रशंसा के आवाज भी सुना थी। ये बात पहुंच गई राजमहल में, इकलौती पुत्री थी राजा दशरथ की, उसने अपने पिता से आज्ञा ली कि मैं भी महात्मा के दर्शन करने जाऊंगी, आज्ञा दे दी, साथ में उसकी नौकरानियां चली गई, दासी बांधी चली गई, अंगरक्षक चले गए। अब वहां क्या देखा, अब उस लड़की ने, किसी ने बताया कि अब इसकी आंखें कैसे खोले महात्मा, उसने प्रश्न किया अपने मंत्रियों से कि इस महात्मा आंखें खोले तो बात करें इससे कुछ हम, तो ये तो ऐसे बैठे हैं, कुछ हमें उपदेश देवें। तो मंत्रियों ने पूछा किसी से, उन्होंने बताया कि जहां ये जीभ से चाटता है वृक्ष की छाल को, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दो, और अगले दिन थोड़ा सा ज्यादा लगा दो, ये धीरे धीरे इसके अंदर यो प्रवेश करेगा शहद या शक्ति, तो अपने आप आंख खोल देगा। राजा की लड़की को पता चला, वो शहद लेगी साथ में, और जहां वो एक बार जीभ लगाता था वहां शहद लगा दिया। अब ऋषि पहले तो एक बार जीभ मारा करता, उस दिन दो बार मारी उसने, कोई मीठा लग गया। अगले दिन फिर यह क्रिया की, अगले दिन तो काफी देर चाटता रहा उसको, और तीसरे दिन उसने आंख खोल ली, इधर उधर देखा, भोजन साथ ले गए थे, आहार खिलाया, खीर खिला दी, फल दे दिए, हफ्ते पाछा वो छकन लग गया, कति टाट सी हो जाए पेट उसका। अब राजा से प्रार्थना की लड़की ने कि महात्मा जी को अपने घर ले आए, राजा दशरथ ने उसको गुरु बना लिया, और जो पुत्र प्राप्ति की यज्ञ भी उसने श्रृंगी ऋषि की देखरेख में की थी, और अंत में उस लड़की ने और उस ऋषि जी ने ब्याह कर लिया, शादी की ठान ली। राजा दशरथ तक क्षत्रिय वो ब्राह्मण ब्याह नहीं हो सके तो फिर उसका कोई और जुगाड़ जोड़ा, किसी और ऋषि ने ब्राह्मण ने वह गोद ले ली, फिर उनका विवाह करके वह फिर चले गए। तो कहने का भाव ये है, ये कह रहे हैं, ये गीता ज्ञान ये बता रही है हमें। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 26वां श्लोक क्या बताना चाहता है। ये चौथे अध्याय का 26वां श्लोक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों के संयम रूप अग्नि में आवन किया करते हैं। कुछ तो कान बंद कर कई इसको, और फिर दूसरे शब्द आदि विषयों को, शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषयान, इन विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और दूसरे इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी सांस और श्वास को कहते देखते रहो, श्वास बाहर आ रहा है इस पर ध्यान रखो, अंदर जा रहा ध्यान रखो। और ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। और अन्य अपरे अन्य कई महापुरुष दर्व संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, किधर यानी धन से होने वाला जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे कहीं भंडारा कर दिया, किधर को मंदिर का लठ गडवा दिया, को धर्मशाला बनवा दी, कहते इस तरह की साधना वो किया करते हैं। और कोई तप, कोई तपस्या करते हैं, और कुछ योग रूप, ओनली योग रूप हम करने वाले होते हैं, यानी आसन उसन क्रियाएं करते हैं वो करते हैं। और अन्य कितने ही वो करते हैं नीचे, और कितने ही महात्मा कितने ही हिंसा आदि तीक्ष्ण वर्तों से यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। अब ये बताया कि कुछ ऐसे दशे मुंह पर पट्टी बांध रही नंगे पैरों घूमना अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत यानी कठोर व्रत, और यत्नशील पुरुष कुछ स्वाध्याय करते हैं, जैसे गीता जी का एक अध्याय रोज पढ़ लिया, और कोई या कोई और अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए, ऐसे करते हैं। 29:30 में कहा है दूसरे साधक अपान वायु में प्राण वायु को, ये प्राणायाम आदि क्रिया करते रहते हैं, और दूसरे प्राण वायु का अपान वायु में यानी उल्टी सुल्टी अंदर वायु को नाभि से यानी कंठ कमल तक घुमाते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले होते हैं, अल्पाहारी जैसे, और प्राणायाम प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये बनता है वास्तव में कि ये सभी अपने अपने साधनाओं को अनुष्ठानों को पाप नाश करने वाला मानते हैं जानते हैं, इसलिए करें नहीं तो छोड़ दें इनको। अब जैसे ये जो क्रिया यहाँ बताई है कि कुछ प्राण अपान की गति को रोक कर प्राणों को और प्राणों में श्वासों को ही श्वासों में हवन किया करते हैं, और सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाला जानते हैं, इसका अर्थ ये बने। अगर यदि इनको ये ज्ञान हो जाए ये साधना ठीक नहीं तो कोई ना करे, तो जो भी जैसी क्रियाएं करता है उसको श्रेष्ठ मानकर और पाप नाशक जानकर, और पाप नाशक में पाप नाश हुए तो मोक्ष होगा, मोक्षदायक जानते हैं। अब जैसे प्राणायाम जो क्रियाएं हैं सांस रोकने की, इन सीख के ये क्या करे, उसने एक बुग्गी रोक दी, चार घोड़े जुड़ रहे थे उसमें बग्गी रोक दी, योगी था, एक ने कहा बेटा कार ने रोक दी है, नो कार रोक दी उसने, तो ये भगवान पाण के ये तो बाजीगरा के काम है, ये कोई रास्ता है, अमीन ने देख प्रसन्न हो जाया करते ये बड़े योगी पुरुष है, है कि तो गिरडी और छाती पत्थर फोड़ेगा, ये कोई तो क्या, ये तो बकवास है सारी। भक्ति पाने के लिए वो रास्ता मार्ग नारा जो सदग्रंथ बताते हैं। अब इसमें क्या बताया है, अब चौथे जाएंगे 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार की जो अब आपने पढ़ी 25 से लेकर 30 तक, 31 में बताया है कि जो साधना करते हैं, जो जैसी भक्ति करता है उसको वो फल मिलता है, और जो परम अक्षर ब्रह्म की सत साधना करता है तो वो पूर्ण सभी कर्मों से मुक्ति पाता है, और जो साधना योग अनुष्ठान नहीं करता वो यहां भी दुखी और आगे भी दुखी। 31 का ये देख लो, क्योंकि तरतीवाइज पढ़ लेते हैं इसको। अब चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक आपको दिखाते हैं, 30 तक तो हमने पढ़ लिया। इसमें क्या लिखा है, कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म सनातनम ब्रह्म यान्ति, यानी ये सत साधना के बारे में है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुष्ठान करने वाले, ये बहुत डिटेल है, इसकी अलग से बताई जाएगी। सनातन ब्रह्म को परब्रह्म नहीं, सनातन परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले यानी कोई धार्मिक अनुष्ठान विधिवत नहीं करते तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। जो साधनाएं नहीं करते यज्ञ न करने वाले के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो परलोक कैसे होगा। अब 32 में बताया है, ये क्लियर कर दिया चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक। इस प्रकार और भी बहुत तरह की बहुविधा यज्ञ, यहां इन्होंने गलती कर दी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, नहीं यहां करना चाहिए था सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से स्वयं आकर बोली है, सतलोक से चलकर आते हैं और अपना ज्ञान आप ही बताते हैं। अब यहां ब्रह्मण कार्चन ने वेद लिख दिया, ये कभी किसी अज्ञानता के कारण तत्व ज्ञान ना होने से सदग्रंथों के अर्थों का अनर्थ करना पड़ा इन्होंने। अब यही ब्रह्मण शब्द है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ये देखिएगा, ये देखो 17वां अध्याय और ये 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। अब ओम तत्सत इति निर्देश है, ओम तत्सत यह एक निर्देश है, नथिंग एल्स। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण करने का, और उसको तीन प्रकार से वो स्मरण किया जाता है त्रिविध है। अब जिनको ये सारनाम प्राप्त हो गया उनको खूब पता है वो कैसे स्मरण होता है, ये तीनों मंत्र जिनको मिल गए। तो इन्हीं के शब्दों में अनुवाद क्या किया है, ओम ओम तत् तत् सत सत कर दिया, इति यह त्रिविध है तीन प्रकार का, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का समझो नाम कहा, यानी उसके पाने का मंत्र है ये, उसका नाम तो एक है लेकिन इसको पाने का मंत्र है ये, और त्रिविध माने तीन प्रकार से उसका स्मरण होता है, तीन प्रकार से उसके स्मरण करना है, और इसका ब्रह्मणे का अर्थ सचिदानंद घन ब्रह्म किया है, ये ध्यान रखना। अब हम फिर आते हैं लौट कर चौथे अध्याय के, चौथे अध्याय के हम फिर 32 में आते हैं, वही 31 तक हम पढ़ चुके हैं, ये ब्रह्मण शब्द है। एवं बहुविधा यज्ञ वितीता, वितता माने विस्तार से कही गई है, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष और तीसरा जो है वो उत्तम पुरुष तो अन्य परम अक्षर ब्रह्म। 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में प्रथम मंत्र का उत्तर दिया परम अक्षर ब्रह्म है, तो ये परम अक्षर ब्रह्म है और उसने अपने मुख से बोले यहां आकर, चारों वेद गवाही देते हो परमात्मा वहां से चल कर आता है, अपने तत्व ज्ञान को बोलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। ब्रह्मणे मुखे माने सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी, वो कबीर वाणी है, इसका अर्थ ये है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, सचिदानंद घन ब्रह्म की अमृत वाणी में उसके उनके मुखारविंद से उच्चरित वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। यानी गीता मत है नहीं वो, और वेद चारों वेदों का सारांश गीता है, तो उसमें विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, कर्म जान यानी उनको कर्मों से होने वाले शारीरिक क्रियाओं से ही होते हैं वे, और ऐसा जान एवं इस प्रकार जानकर तू उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, सर्वथा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अब 33 में क्या कहा है कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ है परंतम, के एक द्रव यज्ञ की अपेक्षा ये ज्ञान यज्ञ श्रेयान है, उत्तम है। एक द्रव यज्ञ तो वो है जैसे कि तो मंदिर बनवा दिया, कि तो कोई धर्मशाला बनवा दी, कि तो कुआ खुदवा दिया, तालाब बनवा दिया है। कहते हैं ये बिना किसी ज्ञान के अंधाधुंध धन लगाते हैं, पहले ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ श्रेयान। और सर्वक्रम अखिलम पार्थ ज्ञाने प्रिसमाप्यते, यानी तत्व ज्ञान जब हो जाएगा ये बकवादों वाले कर्म जो हम करते हैं उसमें समाप्त हो जाएंगे, यानी फिर हम उठपटांग काम नहीं करेंगे। अब इनके अनुवाद में हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, ठीक है। यानी ज्ञान समझ पहले तू, और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, फिर हम भी दरुदर के जो डले डोए हैं वो नहीं करेंगे, हम फिर शास्त्रानुकूल साधना करेंगे। अब चौथे में कमाल किया, लास्ट यहाँ ला दिया कि वो ज्ञान जो तत्वदर्शी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है वो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से दंडवत और सेवा अब कपड़ छोड़कर उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से तत्वदर्शनी वो परम तत्व के को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि इस गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, और उसी से पूर्ण मोक्ष होगा और नहीं होगा, उसी से वो सचिदानंद घन ब्रह्म प्राप्त होगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। फिर इसने प्रमाणित फिर संकेत कर दिया 15 में जाए के 1 से लेकर 4 में 16 और 17 में क्लियर कर दिया इसने सारा कंसेप्ट। उसमें बता दिया कि तत्वदर्शी संत की यह पहचान है जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा भिन्न भिन्न सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक, गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशोध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, सवेदवित अविनी के शब्दों में आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जिस परमात्मा की जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है इस वृक्ष की। अब देखिएगा ये देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष देखो, अब आसानी से समझ में आएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊपर को जड़ता यह परम अक्षर ब्रह्म है, सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी इन्होंने लिखा है आदि पुरुष परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर ये आदि पुरुष है, ये तो समझो जड़ है जो सतलोक अलखलोक अगमलोक रूपर के लोकों में रहता है अकह लोक में, और उस जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको बोलते हैं तना, वो पेड़, ये सारा पेड़ है और वो परम अक्षर ब्रह्म गुप्त है, वो जड़ है समझो। अब ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा पेड़ का दिखाई दे, वो पेड़ कहलाता है। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में है और उस परमेश्वर ने आके ये बताया था। अक्षर पुरुष तो ये तना है और उसकी ये मोटी डार है, ये सरपुरुष ज्योति निरंजन ये काल, और इसके तीन पुत्र हैं, तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी, और ये तीनों देव रूपी शाखा है, तीन गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये परमात्मा मूल है, जो है आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो मूल वाले, और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये अगले दूसरे श्लोक में आएगा तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसको सभी विभागों को बताता है वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा परमेश्वर स्वयं आए थे सचिदानंद घनब्रह्म 600 वर्ष पहले, काशी में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे नवजात शिशु के रूप में, जो परमात्मा ऐसा ही लीला करते हैं उनके विधान में है। तो उस समय आकर उन्होंने ये वाणी बोली थी सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी, उसमें कहा था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष कहो चाहे ज्योति निरंजन कहो वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अपनात्मा हमारे सदग्रंथ जो है ये अनमोल रतन है, लेकिन इनको समझ नहीं सके, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किस विध लग गए हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। एक व्यक्ति पैसे वाला था, उसने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था, मंदिर अपना अपने खुद की पूजा के लिए आंगन में मकान से बाहर, और उसमें एक चार द्वारी सी बना रखी। अब उसकी अचानक मृत्यु होगी, पुत्रों को पता था कि पिताजी के पास बहुत धन है, तो उन्होंने देखा कि अवश्य वो कहीं ना कहीं बही में लिखा होगा कहाँ कहाँ कितना पैसा है। तो उन्होंने पढ़ा उस पुस्तक में लिख रखा था बही में यानी एक डायरी में कि इतना सोना, इतने किलो चांदी, इतने सिक्के, अच्छा धन लिख रखा था कि वो चांदनी चौदस रात के 12 बजे और मंदिर के गुम्बज में दाब रखे हैं। अब उन्होंने क्या किया वो समझ मत आया नहीं, कोड वर्ड क्या लिखे थे वही में, वो मंदिर का गुम्बद फोड़ दिया, उसमें कुछ पाया नहीं, बड़े चिंतित हुए भाई इतना धन था और पिताजी तो झूठ बोल गए, इसमें है नहीं वो पैसा कहाँ है। इस चिंता में मित्र था उनके पिता का, उसके पास गए, उनको उन्होंने बही दिखाई कि देखो ताऊ जी अंकल जी हमारे पिताजी ने क्या किया, ये लिख रखा धन हुआ है नहीं, हम तो मर गए लुट गए पिट गए। वो समझदार था, वो कहने लगा बेटा तुम ऐसे करो इस गुम्बज को फिर बनाओ, ऐसा ही बना दो, तुम नजर नाश कर दिया। अब वो भी ना पावजड़ा दावे रखा था क्योंकि वो निशान खत्म, उसका अर्थ ये था जब रात के 12 बजे और चांदनी चौदस यानी सूदी चौदस, तो उसका अर्थ था कि उस रोशनी के उस समय चांद की चौदस के दिन और गुम्बज की परछाई जहां जावा जहां गुम्बज बन जा छाया से, वो कोडवर्ड थे वहां खोदना था आंगन, तोड़ दिया गुम्बज बिना अकल क्या ने, तो दोबारा गुम्बज बनवाया अगले चौदस के दिन, फिर वो रात के 12 बजे उसके अंकल ने वो निशान लाग बेटाड़े खोदो, वो जो कानू पा गया सारा धन दबाया। तो ये नसब ने हमारा गुमद फुड़वा दिया, वो यथार्थ स्थान पर ये पहुंच नहीं सके, ये कोडवर्ड समझ नहीं सके इन सदग्रंथों के। ओम तत्सत ये सीधा नाम दे है वो हरि हरि और लाजशील, ओ हरि ओम तत्स हरि ओम तत्स रे तेरा गज भैया। अब पुणात्मा वस्तु कहाँ और खोजे कहाँ, किस विध लग गए हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ, यानी तत्वदर्शी संत मिल जाए, फिर एक मिनट में सारा सदग्रंथ समझ में आ जाएंगे। और सदग्रंथों में जो लिखा है वो फाइनल है, हुआ भाई दुनिया बकरी वक्ते रहो, और सदग्रंथ के आधार से हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो हमारी थ्योरी होती है यानी रिटर्न में जो विवरण होता है उसके आधार से प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी गलत है तो वो प्रैक्टिकल क्या करेंगे, उसके ऊपर झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लावे, थारा ज्ञान एकाने का नहीं, फिर उनको ढाई घंटे सुबह बैठो ढाई घंटे शाम पता खाक बैठोगे, जीवन बर्बाद करने लग रहे, हजार हजार वर्ष बैठ गए घूघू बन कर किसी ने कुछ ना पाया, तुम्हारा ध्यान कुछ भी साधना को ना, वो तो कम से कम सीधा मंत्र तो ओम का जाप करते थे उससे कुछ लाभ होता है, ये 36 अड़ंगे दे दिए रंग कौर और ज्योत नरदन एक सीधे काल के